प्रिय भक्तों, भाई बहनों, बालको बालिकाओं, आज 29 जुलाई 2020 का दिन आपके लिए सुंदर तथा सुव्यवस्थित हो और आप भगवान को प्राप्त करने का जो उद्देश्य हमें संतों और सदग्रंथों ने दिया है उसे प्राप्त करने के लिए आगे से आगे अग्रसर होते रहे। गीता अध्याय 2 के मैंने कल 20-30 तक 10 श्लोक पढ़े थे, आज मैं थोड़े से 10-30 श्लोक और पढ़ना चाहती हूँ, तत्पश्चात मैं किसी भक्त के संस्मरण सुनाऊंगी। गीता अध्याय 2 श्लोक 31। स्वधर्म चावेक्ष न विकम्पितुर्मर्हसि, धर्म विद्याचो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अपने क्षत्र धर्म को देख कर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मी युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकार कर्म नहीं है। अपने अपने इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने कर्तव्य को धर्म मानकर निरंतर आगे से आगे बढ़ना चाहिए। गीता श्लोक 32। विदिच्छा चौपन्नम स्वर्ग द्वारम आपावितम सुखना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम देशम। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। ये पिथानंदन, ये क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अर्थात एक बार धन्यु ग्राम न करी तथा स्वधर्म कीर्तिजा हित पापम वापसी। अब अगर तू ये धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन भली भांति नहीं करता तो उसके धर्म का प्रत्याग हो जाता है और उसको कीर्ति भी नहीं मिलती है तथा उल्टा उसे पाप लगता है। अकीर्ति चापि भूतानि प्रतिष्यन्ति इति अभ्याम संभावी तस्य क्या कीर्ति मनादतिचित्रध्याय 34। वो सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अप कीर्ति का कथन तथा निंदा करेंगे। वह अप कीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। ये श्लोक तो संसारी मनुष्य के लिए बहुत ही कायदे का है। देखिए कहते हैं भगवान ये अपकीर्ति ठीक नहीं, क्योंकि जिसकी अपकीर्ति हो जाती है उसकी निंदा होती ही रहती है। इसलिए कहते हैं कि मृत्यु से भी बढ़कर अपकीर्ति जो है दुखदायी होती है। मतलब मरना भला है पर अपमान सहना कठिन है। वेदना दुप्रतम सेवते महारथा ईश्वर चा तुम बहुमतो भूतवा या शशि लाघव। गीता अध्याय 35। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू वो मान्य हो चुका है तू लगता को प्राप्त हो जाएगा। गीता अध्याय 36। अवश्य वादाच्यंती त्वाहिता निंदन तस्तव सामर्थ्य ततो दुक्तम किम। तेरी शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर वो दुख की बात क्या होगी। गीता अध्याय 37। हतो बा प्रप्सि स्वर्ग जितवा बाप मोक्ष महीन तस्मा दुतिष्ठ कौंतेय युद्ध भाए कृत निश्चया। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर युद्ध तू जीते जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुखे दुखे समय की तो लावा अलहो जो तथो युद्धाय युद्ध पापम बाप से सीन, ये प्रजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। देखिए क्या कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए सुख और दुख मत देखो। भले ही कर्तव्य का पालन करते हुए दुख आ जाए अथवा सुख, लाभ हो जाए अथवा हानि, ये हो जाए चाहे पराजय, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। गीता अध्याय 39 ईशातिया सांख्य बुद्धि योगम तमा शुरू बुद्धि युक्त आया पार्थ कर्म बंधन रहस्य। हे पार्थ, ये सब बुद्धि तेरे लिए संख्या योग में कही गई। अब तू उसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। हावी कम नास्तोस्ती प्रतिभा न विद्यते स्वल्प मुपस्या धर्मस्या त्रायते महतो भ्यात। गीता अध्याय 40 मनुष्य लोक में समृद्धि रूप धर्म के अलम का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन मन महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान इस श्लोक में चार प्रकार की समता के विषय में कहते हैं। समझाना, सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, कोई गाली दे, गलौज करे, बड़ी प्रशंसा करे, निंदा करे, मनुष्य को स्थिर रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। भगवान श्लोक में कहते हैं कि समता चार प्रकार की होती है। समता से और इससे लाभ भी उतने ही होते हैं। पहला लाभ है समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सम लेके करेंगे तो हमें कर्म का बंधन नहीं बांधेगा। और दूसरा है समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य का भी कभी नाश नहीं होता। हम जिसके लिए समता करें, जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य से, वो कभी खत्म नहीं होगा। तीसरा है समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसको उल्टा फल भी नहीं मिलता। समता करते हुए कि हम सब बराबर है, सबको बराबर देना, सब एक सी बात करनी है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। जैसे कि होता है घर में संस्थाओं में चलिएगा, समता नहीं होती है तो वहाँ उल्टा फल मिलता है। लेकिन जहाँ समता होती है, समता करते करते यदि कोई भूल भी हो जाए तो उसका पाप नहीं लगता। और चौथा लाभ क्या है, समता का थोड़ा सा भी भाव हो जाए तो वह कल्याण कर देता है। अगर हमारे मन में ये आ जाए कि हम सभी समान हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ कर रही हूँ उसमें ऐसा नहीं आना चाहिए भेदभाव, मैं सबके लिए सम हो जाऊँ, और फिर क्या होता है, फिर हमें ना भय रहता है और ना ही समता का कभी नाश होता है। भगवान कहते हैं कि असत को सत्ता तथा महत्ता देने से महान समता भी स्वल्प हो जाती है। ये भी बड़ी समझने वाली बात है कि जो झूठ है उसको हमने कह दिया ठीक है, बड़ी इम्पोर्टेंस दे दी। जैसे कि होता है ये स्त्री तो इतनी महान है, वो है वो है, लेकिन अगर वो झूठ है तो वो स्वल्प हो जाएगी, समता भी खत्म हो जाएगी। गीता अध्याय 2 का अगला श्लोक 41 श्लोक है। व्यवसाय बुद्धि के कुरु नंदना बहु शाखा हनंताश्च बुद्धो अव्यवसायिना। हे कुरु नंदन, इस बुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, जिनका एक निश्चय नहीं है। ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली हो ही होती है। अगर सोचता है तो हमारी बुद्धि एक ही डिसीजन देगी, अलग अलग डिसीजन या निश्चय नहीं करेंगे। आज मैं इतने ही श्लोकों की व्याख्या करने के पश्चात आपको श्री स्वामी जी के सर्वचन लिखने वाली हैं श्रीमती पुष्पा गोयल भूमकर से। श्रीमती पुष्पा गोयल जी लिखती हैं श्री माँ देवी तीर्थ शारदा माँ सेवा संघ द्वारा स्वचालित त्रैमासिक पत्रिका शारदवाणी के विद्यार्थियों अंक पर पूरा होने के उपलक्ष्य में मैं श्री माँ जी तथा संघ को हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरा जन्म और पालन पोषण और पढ़ाई ननिहाल में अखाड़ा बाजार में हुई, जबकि मेरे माता पिता मनाली में रहते थे। जब मैं छोटी ही थी, कभी स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी, तो मासी जी अथवा रीता माँ जी मेरे बड़े मामा श्री कृष्णलाल सूर जी के साथ घूमकर पढ़ने के लिए गई थी, तो मेरी नानी जी ने मुझे भी उनके साथ 10-15 दिन के लिए घूमकर भेजा था। वो मुझे धुंधली सी बहुत थोड़ी सी याद है, लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तो श्री मां जी उच्च शिक्षा प्राप्त करके कुल्लू आए थे और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत थे। रिश्ते में श्री मां जी मेरे सगे मासी जी हैं, इसलिए मुझे बचपन से ही उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। श्री श्री महाराज जी ने वैष्णव मंदिर श्री महादेवी तीर्थ की स्थापना की, तभी से मैं अपने नानी जी के साथ मंदिर जाने लगी। श्री महाराज जी के अलौकिक व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुई। ननिहाल में मुझे साधु संतों की सेवा का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अब मैं श्री महाराज से मिलकर अपने को धन्य मानने लगी। पढ़ लिख कर मैं भी अध्यापिका के पद पर नौकरी करने लगी। फिर मेरी शादी हो गई। श्री माँ जी ने शारदा माँ सेवा संघ की स्थापना की और मैं संघ की सदस्य बनी। मेरे परिवार के सभी सदस्य मंदिर से जुड़े। श्री महाराज जी कहते थे कि गृहस्थ में रहकर भी आप निष्काम सेवा और भक्ति कर सकते हो और नेक कर्म करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हो। मैं यहाँ स्वामी जी के प्रिय सद वचन को उल्लेख करना चाहूंगी। दानों में श्रेष्ठ है अन्नदान। अन्नदान का मूल है ज्ञान, ज्ञान का मूल है चरणों की सेवा और भक्ति। श्री महाराज जी कहते थे कि मनुष्य को भगवान का स्मरण श्वास श्वास में करना चाहिए। जो श्वास श्वास में हरि का भगवान का स्मरण करेंगे वही परम पद पाएंगे। श्री महाराज जी भावना को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने मन देवी तीर्थ की दीवार पर लिखवाया था, भावना का फल पाओ। जब भी परिवार से मैं जाती तो श्री महाराज जी अपने स्थान पर बैठे बैठे प्रत्येक व्यक्ति की भावना को जान जाते थे। ये बड़े प्यार से सबको खिचड़ी खिलाते, चाय पिलाते, जनता जनार्दन की सेवा करने में उनको बहुत आनंद आता था। स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। श्री महाराज जी ने जब जीवित समाधि ले ली तो मुझे अपने मासी जी अथवा श्री माँ जी की बहुत चिंता हुई कि मासी जी कैसे अब अगला जीवन व्यतीत करेंगी। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मासी जी भी मतलब श्री गीता माँ जी भी एक अलौकिक व्यक्तित्व है जो इस धरा पर हम सब के लिए प्रकट हुआ है, इसलिए हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके ऊपर भगवान श्री महाराज जी का बड़ हस्त है। कुछ वर्ष पहले श्री माँ जी को अपना कमरा छोड़ करके दूसरी तीसरी चौथी मंजिल में कहीं जाना पड़ा था, क्योंकि उसमें धर्मशाला बनाई जा रही थी। धर्मशाला को बनाने के लिए माता जी का कमरा रसोई घर जो स्वामी जी ने बनवा दिया था वो सब उसमें कट गया, तो माता जी बिल्कुल ऊपर अकेली सी रहती थी। मुझे घर में बैठे बैठे बड़ा सोच उठता था कि कैसे क्या होगा, उनके माता जी सारी रात वहाँ के लिए रहती होंगी, इसी ख्याल से मैं प्रतिदिन रात को सो जाती थी। एक दिन मुझे स्वप्न आया कि मैं मंदिर गई हूँ, पहले वाला ही मंदिर है, खड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर मैं गई तो सामने छोटी कुटिया के सामने स्वामी जी बैठे हुए हैं और मैंने जाकर उनके श्री चरण कमलों में शीश नवाया। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, फिर कहा मम्मी जी माता जी आप चिंता मत करो, देखो मैंने अपनी मम्मी के लिए बाबा के मम्मी जी के लिए ये इतना बड़ा नाग पहरेदार रखा है। तो मैंने देखा उनके पास एक बहुत लंबा मोटा ताजा बहुत बड़ा सांप बैठा है। मैं कुछ डर सी गई, सोचने लगी वो सांप, तो श्री महाराज जी कहते माँ माता जी डरो मत, बाबा ने इसके दोनों दांत निकाल दिए हैं, ये आपको नहीं काटेगा, ये तो बाबा ने मम्मी जी की रक्षा के लिए मंदिर में रख दिया है। इतना कहने के पश्चात जैसे ही मैंने सांप की ओर देखा तो झटका सा लगा और मेरी आँख खुल। फिर मैंने ये अपना स्वप्न मंदिर जाकर श्री माँ जी को सुनाया कि माता जी ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हुआ, मैं बहुत डरती थी और तो एक दिन स्वामी जी ने मुझे ये सब बता दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा आप खुद ही सोच लीजिए। मतलब माता जी ने कहा कि आप सोच लीजिए कि स्वामी जी ने किस प्रकार रक्षा के लिए अपनी मम्मी की रक्षा के लिए क्या क्या प्रबंध किए हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक तो है, कमाल भाई जी और विवेक भाई जी दो दो यहाँ जवान खड़े हैं, तो माता जी को किस बात का डर। और भी कई बहुत से ऐसे दृष्टांत मेरे जीवन में आए हैं, श्री महाराज जी की कृपा की अनुभूति हुई है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती पुष्पा गोयल। एक छोटा सा संस्मरण है, वो है श्री अनिल अरोड़ा पायलट स्पाइस जेट दिल्ली। अनिल अरोड़ा जी लिखते हैं, मैं अनिल अरोड़ा एवं रश्मि अरोड़ा श्री गीता माँ जी तथा श्री कमाल भाई जी तथा शारदा माँ सेवा संघ को शारदवाणी पत्रिका के 50वें अंक की हार्दिक बधाई देते हैं। मैं अनिल अरोड़ा कुछ वर्षों पूर्व कुल्लू में विंग कमांडर के रूप में कार्यरत था। श्री माँ देवी तीर्थ में श्री माँ जी से मिलना हुआ, क्योंकि मैं परिवार सहित हर 8वें दिन रविवार को वैष्णो देवी मंदिर जाया करता था। जब मैं माता जी से मिला तो मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ और मैं अपने परिवार सहित उनके प्रति समर्पित हो गया। एक दिन श्री माँ जी के पास गया और उनसे आशीर्वाद मांगा कि मुझे पायलट के रूप में प्राइवेट नौकरी मिल जाए। ये सुनकर श्री माँ जी बहुत हैरान हुई और मुझसे कहा कि सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट नौकरी क्यों करना चाहते हो। ये प्रश्न मेरे सामने जब माता जी ने रखा तो मैं केवल मुस्कुराया और शायद श्रीमान जी मेरे भाव समझ गई और मन ही मन मुझे आशीर्वाद दे दिया। कुछ समय पश्चात मुझे दिल्ली में पायलट की प्राइवेट नौकरी मिल गई। मैंने तुरंत श्रीमान जी को सूचित किया और कहा कि माँ अब से आपको हवाई जहाज द्वारा ही यात्रा करनी है तथा सारा प्रबंध मैं करूँगा। श्री माँ जी ने मेरा आग्रह सहज स्वीकार किया और तब मैं श्री माँ जी यात्रा के दौरान हमारे पास दिल्ली ही आती है, दिल्ली से ही वे हवाई यात्रा करती हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे परिवार सहित उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। कभी कभी वो मेरे पास 2-4 दिन ठहर भी जाती हैं। उनकी कृपा से मैं आज एक सुखी जीवन व्यतीत करता हूँ। अनिल अरोड़ा इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी गीता माँ।